देखिए, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवत प्रेम को प्राप्त करना, है ना। इसीलिए हमें मानव जीवन दिया है भगवान ने अहेतु की कृपा से, कृपा करके। हमने कोई खास कर्म नहीं किया था इस जन्म को पाने के लिए, पर प्रभु ने कृपा की है, ये समझना होगा। अब भगवान का प्रेम प्राप्त कैसे किया जाए, तो हर शास्त्र हमारे ये बता रहे हैं कि देखो, कलयुग में भगवान का प्रेम प्राप्त करने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान का नाम संकीर्तन, यानी कि भगवान का नाम लेना। और नाम लेना मतलब कैसे नाम लेना, कैसे नाम संकीर्तन, अर्थ क्या होता है नाम संकीर्तन का? देखिए, अर्थ ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत सारे लोगों के साथ बैठकर करताल बजाकर, ताली बजाकर भगवान का नाम गाए, हरे कृष्ण महामंत्र गाए, तो उसे संकीर्तन कहते हैं। या फिर कोई व्यक्ति अपने मन में ही भगवान का नाम जाप करता रहे तो उसे भी नाम संकीर्तन कहते हैं। अब मन में अगर भगवान का नाम जाप किया जाए तो किस प्रकार से, देखिए, मन में जब हम भगवान का नाम जाप करते हैं या धीरे धीरे बुदबुदा के भगवान का नाम लेते हैं, तो दो तरीके से ले सकते हैं। एक लेते हैं हम प्रीति सहित, है ना, और एक प्रीति रहित। प्रीति रहित यानी कोई व्यक्ति को अभी भगवान में आसक्ति हुई नहीं है, किंतु वो अनासक्त रूप से, यांत्रिक तरीके से, मशीनी ढंग से वो भगवान का नाम लिए जा रहा है, है? तो ये प्रीति रहित है, स्नेह रहित नाम लेना है। और दूसरे व्यक्ति में भगवान के लिए भाव उदित हो गया है, वो भी भगवान का नाम ले रहा है, पर बहुत ही आसक्ति और प्रेम के सहित ले रहा है। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में अंतर यह है कि जब कोई व्यक्ति प्रीति रहित भगवान का नाम ले रहा है, यानी मशीन के तरीके से ले रहा है, तो ये बताया गया कि अगर ऐसा व्यक्ति निरपराधी है, यानी उसने भगवान के प्रति कोई सेवा अपराध ना किया हो, वैष्णव अपराध ना किया हो, गुरु अपराध ना किया हो, तो ऐसा जो निरपराधी व्यक्ति है, जो 10 नाम अपराध नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति उस नाम को यांत्रिक रूप से लेने के साथ साथ ही भगवत धाम पहुंच जाएगा, है ना। लेकिन जो व्यक्ति प्रीति सहित नाम ले रहा है भगवान का, तो उसका क्या होगा? तो बताया जाता है हमारे शास्त्रों में कि ऐसा व्यक्ति भगवान का सानिध्य भी प्राप्त करेगा और उनकी सेवा भी प्राप्त करेगा। इसीलिए भगवान के नाम का जो संकीर्तन है, उसको सर्वश्रेष्ठ साधन कहा गया है, उसे साध्य भी कहा गया है हमारे शास्त्रों में। तो आज जिस श्लोक पर हम चर्चा करेंगे, उस श्लोक का बहुत ही सुंदर अर्थ है, और श्लोक आप ध्यान से सुनिए, तब हम आपको अर्थ भी बताएंगे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बधु जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अर्थात जो चित्त मार्जनकारी संसार महादावानल का निर्वापक यानी उसे बुझाने वाला, मंगल रूपी कुमुद के विकास के लिए ज्योत्सना, विद्या रूपी वधु का प्राण, आनंद समुद्र को वर्धित करने वाला, और जिसके प्रत्येक पद में समस्त रसों का आस्वादन, जो सर्वात्म स्नपनकारी अर्थात समस्त इंद्रियों मन बुद्धि और आत्मा को स्नान कराने वाला है, वही श्री कृष्ण नाम संकीर्तन सर्वोत्कर्ष होकर विराजमान हो रहा है। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये, जिस पर हम अपने एक दो कार्यक्रम तक चर्चा करते रहेंगे, जहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ये जो भगवान यानी भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन है, हरे कृष्ण महामंत्र, उसकी विशेषता क्या है, उसकी अनेक विशेषताएं हैं। सर्वप्रथम ये जो भगवान का नाम संकीर्तन है ना, ये चित्त दर्पण मार्जनकारी है। इसका मतलब ये, देखो, हम ना अनादिकाल से भगवान से बहिर्मुख रहे हैं, है ना, भगवान को नहीं जानते, भगवान हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करते, वो रहे यहाँ पर हमारे ही हृदय में हैं, किंतु हम उनके विषय में कुछ भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि विषय वासना और दुष्ट संस्कार रूपी गंदगी हमारे चित्त में भरी पड़ी है, तो उस गंदगी के कारण हम कुछ भी नहीं देख पाते। जैसे सूरज आसमान में है, लेकिन अगर वहां मेघ आ जाएं, बादल आ जाएं और उसे ढक लें, तो हम कहेंगे सूरज तो है ही नहीं आसमान में, हम तो बोलने लगेंगे। लेकिन आज के न्यूज़पेपर में भी आया कि सूरज इतने बजे निकलेगा, और निकला भी हुआ है, पर बादल आ गए, मेरी आंखों के बीच और सूरज के बीच बादल का पर्दा है। इसी तरह से भगवान वहां पर हैं, लेकिन हम अपने हृदय में भगवान को नहीं देख पा रहे, क्योंकि वहां विभिन्न संस्कारों की गंदगी भरी पड़ी है। तो इस चित्त रूपी दर्पण में, मजे की बात यह है कि इस श्लोक में कहा गया है चेतो दर्पण मार्जनम, यानी ये चित्त रूपी दर्पण है और इसमें भगवान और उनके धाम को प्रतिबिंबित होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारा भगवान से अनादि संबंध है। लेकिन दर्पण अगर स्वच्छ नहीं है तो फिर सामने रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा, दिखाई नहीं देगा। यानी कि दर्पण एकदम मैला कुचैला काला पड़ा हुआ है और उसके सामने अगर आप भी खड़े हो जाएं तो आप अपने आप को नहीं देख पाएंगे उस दर्पण में। ऐसे ही हमारे चित्त का दर्पण तो है, लेकिन ये चित्त का दर्पण इतना अस्वच्छ है कि वहां ही भगवान है, है ना, विभु और व्यापक तत्व श्री कृष्ण और उनका धाम उसमें प्रतिबिंबित हो सकता है, किंतु नहीं होता। क्यों? क्योंकि अनादि काल से जो हमने गंदे संस्कार एकत्र किए हैं और विषय वासनाओं का जो मल एकत्र किया है वो हमारे चित्त पर एकदम चढ़ चुका है, इसीलिए भगवान की रूप गुण माधुरी उसमें प्रकट नहीं होती। हम कहते रहते हैं कि हाँ हाँ हम जानते हैं कि भगवान है, ठीक है, बहुत सुंदर रूप है, आप बोल रही हैं, बहुत अच्छा गुण भी है, लेकिन हमें क्यों नहीं समझ आता? इसीलिए समझ नहीं आता क्योंकि चित्त रूपी दर्पण अभी बहुत मैला है। तो फिर क्या किया जाए? तो बताया, ये जो हरिनाम संकीर्तन है ना, इसका सर्वप्रथम कार्य है चेतो दर्पण मार्जनम, यानी चित्त रूपी दर्पण को ये हरिनाम संकीर्तन अच्छी तरह से मांजता है ना। और ये जितना परिमार्जित होगा, जितना स्वच्छ होगा हमारा चित्त, है ना, वो होगा हरिनाम कीर्तन द्वारा ही। अगर हम सोचें कि हमें ज्ञान मिल जाए, हम योग आदि साधन करने लगे, हाँ, तो फिर क्या तब नहीं होगा? तब बताए नहीं, हरिनाम संकीर्तन से ही चित्त रूपी दर्पण जितना स्वच्छ होगा उतना अन्य किसी भी साधनाओं से स्वच्छ नहीं होगा। पर श्लोक एक बार फिर से आपके लिए, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे भगवान का जो नाम है ना, हरे कृष्ण महामंत्र है, वो हमारे चित्त रूपी दर्पण को परिमार्जित करता है ना। ज्ञान अगर हम लेते हैं, योग हम करते हैं, तो भी हमारा चित्त रूपी दर्पण इतनी जल्दी से मचता नहीं है। याद रखिए, समस्त साधनाओं का अगर आपको फल चाहिए तो तभी वो फल प्राप्त होगा जब आपका चित्त शुद्ध होगा। चित्त शुद्ध हुए बिना किसी भी साधना के द्वारा कोई भी फल आप प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। और अगर ज्ञान आदि साधन से हम अपने चित्त को मांझने की कोशिश करें, भाई हमने खूब सारे वेद पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, है ना, लेकिन अनुभूति कुछ हो नहीं रही है। क्यों? क्योंकि चित्त को वो साफ नहीं कर पा रहा है। पढ़ लिए, लेकिन पढ़ते 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 क्या हुआ, हम इतने कर्कश हो गए, हम इतने तार्किक हो गए, क्योंकि बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, हाँ, लेकिन किसी का अनुगत्य तो किया नहीं, महत संग तो किया नहीं, भगवान का नाम तो लिया नहीं, जिससे हमारे चित्त का दर्पण साफ होता और हम असल मायने को, असल अर्थ को जान पाते, वो तो किया नहीं। तो क्या हुआ कि ये जो ज्ञान है ना, ये अग्नि के समान मल को नाश करने के साथ साथ चित्त को भी नाश कर देगा। अग्नि जो है मल को नाश कर देती है ना, गंदगी नाश कर देती है, लेकिन गंदगी ही की प्लेट को भी नाश कर देती है, जहां गंदगी रखी है ना उसको भी जला देगी। तो चित्त भी नाश हो जाएगा, तो फिर कहां पे हम कुछ कर पाएंगे? चित्त तो चाहिए ना। तो ये जो नाम साधना है ना, भगवान का जब हम नाम लेते हैं और जितनी मात्रा में लेते हैं, यही गंगा जल के समान चित्त को धो देता है और चित्त एकदम शुद्ध हो जाता है, एकदम शुद्ध हो जाता है। देखिए, एक बात और है, नाम कीर्तन जो करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, है ना, उनका चित्त एकदम शुद्ध कैसे हो जाता है, इसका एक और कारण है। याद रखिए, जो भगवान के प्यारे भक्त हैं उनको भगवान नाम बहुत ही अच्छा लगता है, तो जैसे ही किसी के मुंह से वो भगवान का नाम सुनते हैं तुरंत तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं तुरंत। और फिर क्या होता है, फिर जो भगवान का नाम ले रहा है उसे बड़े ही प्रेम से देखते हैं, तो साक्षात भाव से या असाक्षात भाव से, यानी इनडायरेक्टली, वो अपनी कृपा की बारिश उस नाम कीर्तनकारी पर कर देते हैं, है ना। फिर क्या होता है, फिर वो नाम लेते लेते उस व्यक्ति का चित्त बहुत जल्दी मार्जित हो जाता है। और फिर क्या होता है, फिर उस चित्त में महत कृपा से श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा जो कि जान है भक्ति की, भक्ति की जान है, भक्ति की शुरुआत ही श्रद्धा से होती है। अगर श्री गुरु और श्री भगवान के चरण कमलों में श्रद्धा नहीं है तो फिर व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए इस श्लोक में बताया गया है कि जो हरि नाम संकीर्तन है, आपको बताया ना संकीर्तन का मतलब क्या है, है? कि जो हम एक साथ बैठ करके भगवान का नाम गाएं या फिर हम अपने आप हरि नाम का जाप करें, दोनों ही संकीर्तन कहलाते हैं। तो ये जो हरि नाम का संकीर्तन है, ये महत कृपा को आकृष्ट करके हमारे अंदर त्वरित रूप से बहुत ही जल्दी श्रद्धा उत्पन्न कर देता है भगवान के प्रति, है ना। और फिर क्या होता है, फिर उस श्रद्धा से हम भगवान को जानने की इच्छा प्रकट करते हैं और ऐसे महत का संग करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं जो हमें भगवान की तरफ ले जा सके। और फिर क्या होगा, फिर उनका आश्रय ग्रहण करके, जिन्हें कि हम श्री गुरुदेव कहते हैं, उनका आश्रय ग्रहण करके हम भजन रूपी संपत्ति का लाभ करते हैं, हमें भजन रूपी संपत्ति प्राप्त होती है और ये भजन क्रिया हमारे समस्त अनर्थों को दूर करके हमें भगवान के चरणों के और करीब पहुंचा देती है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा
चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम्बुदी वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अर्थात जो चित्त मार्जनकारी संसार महादावनल का निर्वापक, मंगल रूपी कुमुद के विकास के लिए ज्योत्सना, विद्या रूपी वधु का प्राण, आनंद समुद्र को वर्धित करने वाला और जिसके प्रत्येक पद में समस्त रसों का आस्वादन, जो सर्वात्म स्नपनकारी अर्थात समस्त इंद्रियों मन बुद्धि और आत्मा को स्नान कराने वाला है, वही श्री कृष्ण नाम संकीर्तन सर्वोत्कर्ष होकर विराजमान हो रहा है। तो देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। नाम संकीर्तन के द्वारा श्रीमन महाप्रभु ने विश्व में प्रेम प्रचार किया था और प्रेम प्राप्ति के लिए नाम संकीर्तन इतना प्रभावशाली महासाधन है कि निरपराध चित्त में नाम करने के साथ साथ ही प्रेम का उदय होने लगता है। तो हमने पिछली बार आपको बताया था कि कैसे चित्त रूपी दर्पण का मार्जन करता है भगवान का नाम, और अब हम बता रहे हैं दूसरी विशेषता भगवान के नाम की, महादावाग्नि निर्वापणम। कौन सी महादावाग्नि? भव महादावाग्नि निर्वापणम। देखिए, भव का अर्थ क्या है? भाव का अर्थ यह है कि जब हम सांसारिक वस्तुओं के साथ अपने संबंधों की रचना कर लेते हैं, सांसारिक वस्तुओं के साथ जैसे ही हमारे संबंध शुरू होते हैं, भव शुरू हो जाता है। यह रोग है, ऐसा कहा जाता है, भव रोग है, है ना। और ये जो संसार है ना, ये बड़ा ही तीक्ष्ण है, ज्वाला की तरह, है ना। इसे कहा गया है संसार क्या है, महादावाग्नि के समान ज्वालामय है। महादावाग्नि क्या मतलब? देखिए, वन में क्या होता है ना, वन में कोई आग लगाने नहीं जाता, वन में आग अपने आप लगती है और वन की अग्नि से जैसे सारे पेड़ पौधे लताएं जीव जंतु सब जल के भस्म हो जाते हैं, ऐसे ही संसार रूपी दावाग्नि में जो भगवान से बहिर्मुख हैं, यानी जो भगवान की तरफ नहीं मुड़े हुए हैं, ऐसे जीव त्रिताप ज्वाला में लगातार जलते रहते हैं। तो यहां संसार को दावानल क्यों कहा गया? भाई, इसलिए कहा गया क्योंकि दावानल को कोई जलाता नहीं है ना। वृक्ष समूह जो होते हैं वो आपस में जब घिसते हैं, उनका आपस में घर्षण होता है तो उसका जन्म होता है। इसी प्रकार से जीव की जो सांसारिक ज्वाला है, ये जो संसार रूपी ज्वाला हमारे साथ लगी है, वो क्यों हुई? क्योंकि हमारे चित्त में अनेक वासनाएं रहती हैं। वासना दुर्वासनाओं की जो आपसी रगड़ है ना, उससे ही ये संसार की ज्वाला उत्पन्न होती है ना। तो ये ज्वाला कोई लगाता नहीं है, ये ज्वाला हम स्वयं लगाते हैं, ये आग हम खुद लगाते हैं। तो जीव ही इसके लिए जिम्मेदार है, कोई और नहीं है। भगवान को आप दोष नहीं दे सकते। जैसे कि एक बहुत सुंदर कथा है ना, एक बार एक गुरुदेव ने अपने शिष्य को कहा कि जाओ रसोई बनाने के लिए पास के गांव से आग ले आओ। उस समय आग जो है ऐसे माचिस के रूप में नहीं रहा करती थी, है ना, बहुत पुराना समय था। शिष्य ने आग की खोज की लेकिन गांव में उसे अग्नि मिली नहीं। तो उसने गुरुदेव से कहा कि अब वो कहां से लाए। गुरुदेव समझ गए कि ये एकदम अयोग्य है, थोड़ी सी अग्नि भी नहीं ला सकता। तो क्रोधित होकर बोले, जाओ जाओ यम के घर से अग्नि लेकर आओ। शिष्य बेचारा सरल हृदय था, गुरुदेव के आदेश को उसने शिरोधार्य किया और यम का घर खोजने निकल पड़ा। यम महाराज गुरु भक्त शिष्य की उत्कंठा देखकर स्थिर ना रह सके और वो उसे अपने घर ले आए। शिष्य ने जब गुरुदेव का आदेश बताया यम महाराज को और आग चाही, तो यम महाराज पता है क्या बोले? बोले, वत्स, यहाँ आग जलाने की कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ पर उपस्थित आग से अनेकों लोग भस्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आग अपने साथ ही वो लोग लाते हैं, अपनी लगाई हुई आग के द्वारा ही वो भस्म होते हैं, इसलिए वो आग किसी अन्य कार्य में यूज नहीं की जा सकती, प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो कृष्ण बहिर्मुख जीव है, यानी जो भगवान से बहिर्मुख है, उसे अपने कर्म फल अनुसार संसार की ज्वाला में जलना पड़ता है। इसीलिए इसकी दावानल के साथ तुलना की गई है। कितनी बड़ी बात है ना। और फिर, और जैसे दावानल से पेड़ पौधे लता आदि जल जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं, उस समय उन्हें वहां खड़े खड़े ही जलना पड़ता है। पेड़ पौधों को कोई बचाता नहीं है, वो भाग नहीं सकते बेचारे, वहीं खड़े रहते हैं और जलते रहते हैं, जलते रहते हैं, जलते रहते हैं। उनके भाग कर बचने का कोई उपाय नहीं है। ऐसे ही हम लोग जो माया में बंधे हैं, जो भगवान से एकदम दूर हैं, जो भगवान की तरफ नहीं मुड़ना चाहते, जो भगवान को नहीं जान पाते, वो लोग भी दिन रात त्रिताप ज्वाला में जलते रहते हैं और कोई उनके लिए उपाय नहीं होता, खड़े खड़े ही जलना पड़ता है। लेकिन कृष्ण बहिर्मुख जीव स्त्री ताप ज्वाला से बच सकते हैं। उनके पास बचने का एक बहुत शानदार उपाय है, बहुत ही सुंदर उपाय है ना। याद रखिए, ये जो तीन ताप ज्वाला है वो क्या है? ये ज्वाला है, ये अधिभौतिक दुख, अधिदैविक दुख और आध्यात्मिक दुख। ये तीन प्रकार के दुख हमें हमेशा हमेशा जलाते रहते हैं। हमारे मन से जो दुख उपजते हैं, मन में ईर्ष्या होना, दूसरों की उन्नति नहीं देख पाना, ये क्या है? ये आध्यात्मिक दुख है जो हमें जलाती रहती है। इंसान अपने दुख से कम दुखी होता है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी होता है, ऐसी प्रवृत्ति हो गई है। और अधिभौतिक दुख, कितने जीवात्माएं हमें तड़पाते हैं, दुख देते हैं। माँ दुख दे रही है, कई बार सास दुख दे रही है, पति दुख दे रहा है, बॉस दुख दे रहा है, एक मोहल्ले में दुख उपज गया, किसी की लड़ाई हो गई किसी के साथ, कोई जानवर दुख दे गया, कोई काट गया, कितने अधिभौतिक दुख हमारे पीछे लगे रहते हैं। और अधिदैविक दुखों की तो कोई बात ही नहीं है। कभी ज्यादा गर्मी हो गई तो प्रॉब्लम हो गई हेल्थ की, ज्यादा सर्दी हो गई तो हेल्थ की प्रॉब्लम हो गई, भूस्खलन हो गया तो समस्या हो गई, बाढ़ आ गई तो समस्या हो गई। तो ये जो नेचुरल कैलोमिटीज हैं, इनकी तो कोई बात ही नहीं है, कोई इनका कुछ किया ही नहीं जा सकता। तो ये सब हमें इतने दुख देते हैं कि क्या बताएं। पर इनसे बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है संसार रूपी दावानल से और इन दुखों से, इसी पर चर्चा करेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण कार्यक्रम। समर्पण में आपके साथ हूं मैं, प्रेम धारा। हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही सुंदर श्लोक पर, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदा बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अर्थात जो चित्त मार्जनकारी संसार महादावानल का निर्वापक, मंगल रूपी कुमुद के विकास के लिए ज्योत्सना, विद्या रूपी वधु का प्राण, आनंद समुद्र को वर्धित करने वाला, जिसके प्रत्येक पद में समस्त रसों का आस्वादन, जो सर्वात्म स्नपनकारी अर्थात समस्त इंद्रियों मन बुद्धि और आत्मा को स्नान कराने वाला है, वही भगवान श्री कृष्ण नाम संकीर्तन सर्वोत्कर्ष होकर विराजमान हो रहा है। तो आपने जाना कि कैसे संसार दावानल को बुझा देता है भगवान का संकीर्तन। हमने आपको बताया कि ये संसार दावानल क्या है, ये त्रिताप ज्वाला है जिसमें हम जले जा रहे हैं और हमें कोई उपाय दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हम भगवान की तरफ मुड़े हुए नहीं हैं। देखिए, इसका एकमात्र उपाय है कि हम भगवान की तरफ मुड़ें। जब हम भगवान की तरफ मुड़ेंगे तो ही ये त्रिताप ज्वाला हमें जलाएगी नहीं, जला ही नहीं सकती, हम तक आएगी नहीं। कैसे? जैसे कि मान लो भीषण दावानल यानी जंगल की आग लगी हुई है। जंगल में जब आग लगती है कोई लगाता नहीं, ये आपने जाना। और जब जंगल में आग खूब तेज लग गई है और आप किसी फायर ब्रिगेड वाले को बुलाएं कि भाई फायर ब्रिगेड वाले भैया यहाँ आ जाओ और आग बुझा जाओ, तो जंगल की आग पर उनका वश नहीं चलता, नहीं चलता। वो कुछ भी क्यों ना कर ले, जंगल की आग है कि बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। पर वहां भी एक ही उपाय है, अगर घनघोर मेघ छा जाए, बादल छा जाए और खूब झमाझम बारिश हो, तब भीषण दावानल से निवृत्ति पाई जा सकती है, है ना। इसी प्रकार जो हमारी जो त्रिताप ज्वाला हमें जला रही है ना, उससे भी निवृत्ति पाई जा सकती है। परंतु कैसे? नाम संकीर्तन रूपी मेघ के द्वारा। नाम संकीर्तन रूपी मेघ के द्वारा। याद रखिए, जो नाम माधुर्य की वर्षा होती है ना, जब नाम का माधुर्य हमारे अंदर प्रकट होता है, उस वर्षा से है ना, नाम लेते 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 जीव का जो जड़ीय संबंध है ना, वो दूर हो जाता है। देह दैहिक अभिमान दूर हो जाता है। ये अभिमान दूर हो जाता है कि मैं फला फला हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरी गाड़ी, ये मेरी साड़ी, सब पे से जो मेरापन का जो लेबल लगा रखा है ना हमने, ये हट जाता है नाम संकीर्तन की वजह से, भगवान का नाम लेने से। और फिर क्या होता है? और चित्त स्वरूप यानी हम लोग भगवत दास के अभिमान से सदा के लिए जुड़ जाते हैं। हमारे अंदर एक अभिमान आ जाता है कि हम कुछ और नहीं है, हम तो सिर्फ भगवान के शाश्वत दास हैं। शाश्वत दास, बहुत ही सुंदर बात है, हम भगवान के शाश्वत दास हैं। ये बात हमारे अंदर भर जाती है, हम अपनी उपाधियां भूल जाते हैं कि मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, डॉक्टर हूँ, लॉयर हूँ, ये हूँ, वो हूँ, है ना। ये सब कुछ उपाधिमय जगत की जो देन है, उन उपाधियों से हम बरी हो जाते हैं, हमेशा के लिए छूट जाते हैं। कैसे? वही बात, नाम संकीर्तन रूपी मेघ जब हम पर बरसता है, तभी हम अपने इस जड़ीय अभिमान से दूर हो जाते हैं। याद रखना, इन जड़ीय अभिमान के कारण ही हमें अधिभौतिक दुख सताते हैं, आध्यात्मिक क्लेश सताते हैं, और यहाँ तक कि जो अधिदैविक दुख हैं, वो भी हम तक तभी आते हैं। नहीं तो भक्त जब अपने भगवान में मस्त रहता है, खूब मस्त रहता है, खूब उनमें लगा रहता है ना, और उनके नाम में लगा रहता है, तो गर्मी भी उसे सालती नहीं है, और सर्दी जो तीव्र सर्दी है उसमें भी वो एक अडिगता का प्रदर्शन करता है, अडिग रहता भी है। क्यों? भगवान के नाम के बल पर, भक्ति के बल पर। तो इसीलिए इस श्लोक में आपको बहुत सुंदर तरीके से बताया गया कि कैसे संसार दावानल को बुझाता है हरि नाम संकीर्तन। और इस महत्व को जान करके आप भी भगवान नाम संकीर्तन के प्रति आकर्षित हों, आप भी भगवान नाम ग्रहण करें। और अगले कार्यक्रम में भी हम इसी श्लोक पर चर्चा करेंगे, बहुत ही सुंदर श्लोक है, तो सुनना जारी रखिएगा समर्पण। तब तक कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासिरानुदास, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासिरानुदास, सेवा अभिलाष करे नरुत्तम दास, सेवा अभिलाष करे नरुत्तम दास, राधा कृष्ण प्राण मुरारी जुगल किशोर।
समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेम धारा, नमस्कार। कैसे हैं आप? देखिए, अगर हम अपना मंगल चाहते हैं तो हमें भगवान की तरफ मुड़ना होगा, ये आप जानते हैं। और भगवान की तरफ मुड़ने के लिए कलयुग में सबसे बड़ी विधि और सबसे सुंदर विधि कही गई है नाम संकीर्तन, भगवान के नामों का जप, भगवान का नाम लेना। और उसी श्रृंखला में हम एक श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं, और जिस पर काफी लंबी हमारी चर्चा चलेगी। बहुत सुंदर श्लोक है शिक्षाष्टकम का। महाप्रभु ने कहा है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम, आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, अर्थात जो चित्त मार्जनकारी संसार महादावानल का निर्वापक मंगल रूपी कुमुद के विकास के लिए ज्योत्सना, विद्या रूपी वधु का प्राण, आनंद समुद्र को वर्धित करने वाला, जिसके प्रत्येक पद में समस्त रसों का आस्वादन, जो सर्वात्म स्नपनकारी अर्थात समस्त इंद्रियों मन बुद्धि आत्मा को स्नान कराने वाला है, वही श्री कृष्ण नाम संकीर्तन सर्वोत्कर्ष होकर विराजमान हो रहा है। बहुत ही सुंदर। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है ना कि हमारा मंगल हो, मंगल ही मंगल हो। और यहाँ बताया गया है कि जो नाम संकीर्तन है वो क्या है, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम। श्रेयः का मतलब क्या है? श्रेयः का मतलब है मंगल। कैरव का अर्थ है कुमुद। कुमुद एक फूल होता है जो रात को खिलता है जब उस पर चंद्रमा की किरण पड़ती है ना। और चंद्रिका का अर्थ है ज्योत्सना। तो नाम संकीर्तन जीव के मंगल रूपी कुमुद के विकास के लिए ज्योत्सना यानी चांद की रोशनी के समान है। तो चंद्रमा की जो किरण है वो जिस प्रकार से अपने प्रकाश से कुमुद रूपी कुसुम को खिला देती है ना, कुमुद फूल को खिला देती है, प्रफुल्लित कर देती है, ऐसे ही जब हम भगवान का नाम लेते रहते हैं तो हमारा जो मंगल रूपी कुमुद है ना वो खिल जाता है। तो अब मंगल क्या है यानी कि श्रेय क्या है? देखिए, शास्त्रों में दो मार्ग बताए गए हैं, श्रेय और प्रेय। तो मनुष्य जो है श्रेय या फिर प्रेय का आश्रय करते हैं। जो आम भौतिकतावादी लोग हैं वो प्रेय का आश्रय करते हैं, है ना। मंदमती लोग जो हैं वो प्रेय का आश्रय करते हैं। प्रेय यानी जो विषय सुख हमें प्राप्त नहीं हुआ उसके लिए कोशिश करना, और जो विषय सुख हमें प्राप्त हो गया है उसकी रक्षा करना, है ना। कोशिश करना, नौकरी करो, भागो दौड़ो, ट्यूशंस करो, कोचिंग करो, फैक्ट्रीज डालो और विषय सुख प्राप्त करो, ये बटोरो वो बटोरो, है ना। मतलब उसका स्टैंडर्ड बढ़ाते रहो, विषय सुख का स्टैंडर्ड बढ़ाते रहो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते रहो, बॉडी और कैसे आराम को प्राप्त करे, है ना, लेविश लाइफस्टाइल को प्राप्त करे। ये लोग इस प्रेम मार्ग को सबसे अच्छा समझते हैं और प्रेम मार्ग पर ही आज का संसार चल रहा है। हमारी पढ़ाई लिखाई है प्रेम मार्ग को ही जो है उपलब्ध कराती है। और क्या बताएं, और जो विषय सुख मिल गया है उसकी रक्षा करना, उसके लिए इंश्योरेंस कराओ कि भई ये कहीं खत्म ना हो जाए, इंश्योरेंस कराओ, गार्ड रखो, लॉकर में जाकर के रखो, मिल गया है अब उसकी रक्षा करो। बस प्राप्ति और रक्षा, इसी में जीवन समाप्त हो जाता है और हाथ कुछ नहीं आता है। जब हम चले जाते हैं, शरीर खत्म हो जाता है ना, तो क्या होता है? तो ये जो विषय सुख प्राप्त किए और जिसकी रक्षा की वो धरा का धरा रह जाता है, अरक्षित रह जाता है ना, अब कोई भी लूटे। तो और श्रेय क्या है? श्रेय यानी मंगल का अर्थ है भक्ति। भक्ति, ज्ञानीगण जो लोग होते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो श्रेय का वर्णन करते हैं। और श्रेय का अर्थ या मंगल का अर्थ हो गया या कल्याण का अर्थ हो गया, भगवान के जो दास जीव है ना, जिस भी चीज के द्वारा भगवत सेवा प्राप्त कर सकें, शुद्ध जीव के लिए वही श्रेय है। ये याद रखिए, देह और दैहिक के शुभ अशुभ के प्रति हम जितने दिन तक आवेशित रहेंगे, जब तक हमारा मन उस तरफ चलायमान रहेगा, तब तक बारंबार जीव को अमंगलमय संसार के गड्ढे में गिरना पड़ेगा और बारंबार अनेक प्रकार की योनियों में घूमना ही पड़ेगा, चक्कर लगाता रहेगा, चक्कर ही लगाता रहेगा। तो प्रेय का मार्ग इंसान को 84 लाख योनियों में ले जाता है, अनेक प्रकार के नर्क में ले जाता है। पर जब हम भगवान का नाम लेते हैं तब क्या होता है? भगवान का जब हम नाम लेते हैं तो धीरे धीरे भगवान का नाम लेते 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 भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि व्यक्ति का जो देह और दैहिक का आवेश है कि ये मैं हूं और ये सारा कुछ मेरा है, ये मैं और मेरेपन का जो नाश करता है वही है नाम संकीर्तन, भगवान का मंगलमय सुंदर प्यारा प्यारा नाम। और जब इंसान का ये मैं और मेरा यानी अहमता और ममता समाप्त हो जाती है, देह और दैहिक यानी जो देह से संबंधित है उसे दैहिक कहते हैं, है ना, कि ये हमारा कुनबा है, ये खानदान है, ये हमारा मोहल्ला है, ये हमारा घर है, ये मेरा ये है वो है और ये मैं हूं। मैं क्या हूं? मैं यहाँ ऑफिसर हूं, मैं यहाँ पर मंत्री हूं, मैं यहाँ पर संतरी हूं, मैं यहाँ पर ये हूं, ये मैं जो लगा रहता है ना, ये सारा कुछ, ये जो आवेश है ये नष्ट कैसे होगा? ये जब हम भगवान का नाम बहुत सिंसियरली ग्रहण करेंगे, बहुत सीरियसली ग्रहण करेंगे, गंभीरता पूर्वक और भगवान के नाम को लेते रहेंगे, तो कलयुग में बताया गया है कि नाम और नामी जो है एक ही है, भगवान का नाम और भगवान स्वयं एक ही है। तो भगवान में जो शक्ति है हरि नाम में भी वही शक्ति है। तो हरि नाम मनुष्य के देह दैहिक आदि के आवेश को नष्ट करके उनके जो मंगलमय भक्ति साधन कुमुद को ज्योत्सना द्वारा सुविकसित करती है। भक्ति साधन ही हमारा तो मंगलमय है ना। मंगल क्या है आपको बताया ना, मंगल वो जिसके द्वारा भगवान की सेवा का लाभ हमें मिल सके, हम भगवान की सेवा प्राप्त कर सके यहाँ भी और उनके धाम में भी। तो उसके लिए करना होगा भक्ति साधन, वही हमारा मंगल है। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन अर्चन ये सब भक्ति साधन है और ये मंगल है। और ये जो मंगल है ना, भक्ति साधन रूपी कुमुद है, ये जो है हरिनाम रूपी ज्योत्सना द्वारा विकसित हो जाता है। हमारे साधन विकसित होते चले जाते हैं, साधनों में रुचि बढ़ती चली जाती है। और भी आगे क्या होता है इसी पर चर्चा करेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण कार्यक्रम। समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेमधारा। हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही सुंदर श्लोक पर, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बधु जीवनम आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम जैसे कलिहत जीवों के लिए भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति का बहुत सुंदर तरीका बताया है। समस्त शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग में भगवान का नाम जीवों को तार देगा, उन्हें भगवत धाम पहुंचा देगा, भगवान की प्राप्ति करा देगा। तो नाम में इतनी शक्ति है ना। कहा भी गया है, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविध भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते ध्वरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम हरिते होय प्रेम धन। यानी नाम संकीर्तन देश काल आदि के बंधन से रहित है, अधिकार अनधिकार से परे है कि भाई किसका अधिकार है। पूजा तो हर कोई कर नहीं सकता है ना, मंदिर भी कोई जाते हैं कोई नहीं भी जा सकता है, लेकिन नाम पर सबका अधिकार है और भगवान का नाम और भगवान एक ही है। और परम अमृतमय नाम संकीर्तन साधक की साधनावस्था और सिद्ध की सिद्धावस्था दोनों में, यानी कोई साधन करे और किसी को भगवत प्राप्ति हो जाए तो वो सिद्ध हो गया, दोनों ही अवस्था में सभी प्रकार के उत्कर्ष को प्राप्त होकर जययुक्त हो रहा है। बड़ी सुंदर बात है। तो हमने आपको बताया कि जो भगवान का जो नाम है ना वो क्या है, श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम। श्रेया यानी मंगल, और मंगल बताया कि भक्ति साधन ही हमारे जीवन में मंगल हैं, जिनसे हमें भगवान की सेवा की प्राप्ति होती है इस जन्म में और अगले जन्म में भी। यानी कि जब हम भगवान को प्राप्त कर लें उनकी सेवा, तब हमें वहां प्राप्त होती है। शुद्ध सिर्फ भगवत प्राप्ति नहीं होती है, भगवान की सेवा प्राप्ति होती है, जो जीव का आनंद स्वरूप है। जीव का आनंद सेवा में ही है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ आपको बता रहे हैं इस श्लोक में कि ये जो मंगलमय भक्ति साधन कुमुद को, कुमुद यानी फूल जो कि चंद्रमा की रोशनी में खिलता है, और चंद्रमा की रोशनी यहाँ पर क्या हो गई, यानी भगवान का नाम। भगवान के नाम से ही हम भक्ति साधन में जो है पूरा पूरा अपने आप को निवेशित कर देते हैं, और वो भक्ति साधन इतने रुचिकर इतने इंटरेस्टिंग लगते हैं कि फिर हमारा जो दिल और दिमाग कहीं और नहीं जाता है, है ना। तो फिर क्या होता है, फिर नाम लेते लेते भव महादावाग्नि निर्वापणम की अवस्था आती है, ये आपको बताया था हमने, और इससे अनर्थ निवृत्ति होती चली जाती है। जो हमारे हृदय में इतने सारे अनर्थ हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, फिर यही नाम आपको निश्चला भक्ति की स्टेज तक ले जाता है। यानी अब आपकी भक्ति डगमगाती नहीं है, पूरी तरह से श्री राधा श्याम सुंदर में आपकी भक्ति एकदम अचल भाव से स्थित हो जाती है, सुदृढ़ हो जाती है। तब क्या होता है, तब साधक के हृदय में मंगल मंगलानाम यानी समस्त मंगल का मंगल रूप अर्थात भक्ति साधना रूपी कुसुम फूल स्वतः ही विकसित हो उठता है, खुद ही विकसित हो जाता है, किसी को विकसित नहीं करना पड़ता। यानी कि देखिए, जब कोई बाग में फूल लगाता है तो किसी को लगाना पड़ता है ना, बीज डालना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ। यहाँ भगवान का नाम लेते 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 हमारा जो मन है ना वो श्रवण कीर्तन वंदन स्मरण आदि भक्ति अंगों में पूरी तरह से लगने लगता है, उनमें निष्ठा बन जाती है, उनमें रुचि प्राप्त हो जाती है ना। नहीं तो लोग कहते हैं जी हमारा तो मन ही नहीं लगता जी भक्ति में, हम तो नाम नहीं ले पाते, हमें तो अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन जब आप नाम लेते रहेंगे तो अपने आप आपकी रुचि बनती जाएगी, फिर आप जो है भजन में जब रुचि लेंगे तो जाहिर है प्रेम के लक्ष्य तक भी आप पहुंच ही जाएंगे। तो ये भगवान नाम में रुचि आपकी हो और भजन साधनों में भी आपकी रुचि हो और हमारी भी हो, इसी शुभकामना के साथ अब इजाजत चाहती है आपसे प्रेम धारा। नमस्कार।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासी रानुदास, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासी रानुदास, सेवा अभिलाष करे नरुतम दास, सेवा अभिलाष करे नरुतम दास, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरणे गति हार नाहि मोर, जीवने
कुछ समय से एक बहुत ही सुंदर श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं जहां भगवान के नाम की महिमा का वर्णन हुआ है। गौरांग महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने ये बताया है, समस्त शास्त्रों का उद्धरण देते हुए एग्जाम्पल देते हुए बताया हुआ है क्या कि कलयुग में हरि नाम के अलावा कोई दूसरा विकल्प इतनी जल्दी कार्यरत नहीं होता, इतनी जल्दी हम पर प्रभाव नहीं डालता और भगवान का प्रेम हमें उपलब्ध नहीं कराता जितना कि हरि नाम। हरि नाम से सब कुछ संभव है। तो हरि नाम की क्या विशेषताएं हैं, हरि नाम हमारे जीवन में क्या क्या करता है, इसी पर हम पिछले समय से चर्चा कर रहे हैं, कुछ एक हफ्तों से। आज भी हम इस चर्चा को जारी रखते हैं। आइए श्लोक को एक बार फिर से हम दोहराते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्या बधु जीवनम, आनंदा बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम, पूर्णामृता स्वादनम, सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अर्थात जो चित्त मार्जनकारी संसार महादावानल का निर्वापक, मंगल रूपी कुमुद के विकास के लिए ज्योत्सना, विद्या रूपी वधु का प्राण, आनंद समुद्र को वर्धित करने वाला, जिसके प्रत्येक पद में समस्त रसों का आस्वादन, जो सर्वात्म स्नपनकारी अर्थात समस्त इंद्रियों मन बुद्धि आत्मा को स्नान कराने वाला है, वही श्री कृष्ण नाम संकीर्तन सर्वोत्कर्ष होकर विराजमान हो रहा है। बहुत ही सुंदर बताया गया है यहाँ पर आपको। अभी तक हम चित्त मार्जनकारी संसार महादावानल का निर्वापक, मंगल रूपी कुमुद के विकास के लिए ज्योत्सना, ये हम इन विशेषताओं पर चर्चा कर चुके हैं श्री नाम के। तो हरि नाम जो है विद्या वधु जीवनम भी है। देखिए इसका मतलब क्या, विद्या वधु यानी ऐसे तो हमारे पास अनेक विद्याएं हैं, मटेरियल विद्या, भौतिक विद्या, औषधि विद्या, ना जाने कितनी प्रकार की विद्याएं संसार में एकदम फैली हुई हैं। लाइब्रेरी में जाइए तो कितनी तरह की बुक्स, कितनी तरह के टॉपिक्स है ना, कितनी तरह के चीजों को सिखाने वाले टॉपिक्स सब हैं, सबको विद्या ही कहते हैं, ये सब विद्या है ना। लेकिन विद्या जिसे कि हम ज्ञान कहते हैं, ये ज्ञान अगर हमारी आत्मा की भलाई ना कर सके और सिर्फ शरीर की भलाई करे तो वो बेकार है। तो फिर तो देखिए ये भी आपको बताएं कि ज्ञान जो है वो उसके जो साधक हैं, ज्ञान खासतौर से आध्यात्मिक ज्ञान, उसके साधक दो प्रकार के हैं, एक निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के साधक, एक सविशेष भगवत ज्ञान के साधक। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान जो सोचते हैं कि जो भगवान क्या है वो एक रोशनी है, बस रोशनी के समुद्र हैं, तो वो किस प्रकार का ज्ञान है, तरंगहीन समुद्र के समान वैचित्र्यहीन है, उसमें कोई विचित्रता नहीं है, रोशनी में क्या विचित्रता होती है। रोशनी ना कोई लीला करती है, ना कोई शक्ति हो सकती है उनमें, ना करुणा होता है। ये सब तो किसी व्यक्तित्व के गुण है ना, लीला करुणा व्यक्तित्व के गुण है। तो जब सविशेष भगवत ज्ञान क्या है, वो तरंगायित सिंधु के समान है ना। एक समुद्र ऐसा जिसमें कोई तरंग ही ना उठे तो उसे देखने में क्या मजा आएगा, लेकिन जब आप समुद्र के किनारे जाते हैं तो देखते हैं कितनी सारी लहरें आ रही हैं, चांदी की तरह चमकती चमकती चमकती, है ना, कितना मजा आता है। और उस समुद्र में कितने सारे जो हैं समुद्री जीव रहते हैं, कितने सारे समुद्री वनस्पति उगती है, मोती पाए जाते हैं, है ना, कई कई जो है मणिमाणिक भी पाए जाते हैं, इसीलिए समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है। तो रत्नाकर तो वही हुआ ना जिसके अंदर विचित्रता है। तो ये जो दोनों ही प्रकार का ज्ञान है, चाहे भगवत अनुभूतिमय सरस विचित्र ज्ञान जो कि कह लीजिए सविशेष भगवत ज्ञान है वो, या फिर निर्विशेष ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, ये दोनों ही ज्ञान विद्या रूपी वधु का प्राण स्वरूप है ना। ये दोनों ही ज्ञान विद्या रूपी वधु है और इनका प्राण क्या है, भगवान का नाम संकीर्तन। याद रखना ये जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान की साधना भी है ना, वो भी भगवान के नाम संकीर्तन के बिना प्राणहीन है। क्यों? क्योंकि कहा गया है भक्ति बिना कौनो साधन दीते नारे फल, सब फल दे भक्ति स्वतंत्र प्रबल, है ना। भक्ति के बिना कोई भी साधन आप कर लीजिए भगवत प्राप्ति के लिए, हाँ, या फिर निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, या फिर कोई सिद्धि की प्राप्ति के लिए, तो फल नहीं मिलेगा। भक्ति ही स्वतंत्र रूप से फल देती है। इसीलिए विद्या क्या हुआ, विद्या का अर्थ हुआ सा विद्या तन्मतिर्यया, यानी जिसके द्वारा भगवान के चरणों में मति या बुद्धि की अचल स्थिति हो वह ही विद्या है, और ये भक्ति ही विद्या कहलाई जाएगी। तो जो विद्या है या भक्ति है उसे वधु क्यों कहा? भाई वधु का मतलब क्या है? वधु का मतलब होता है दुल्हन। जब कहीं किसी की शादी होती है तो चाहे शादी में कोई गया हो ना गया हो, लेकिन हर कोई लालायित होता है, चलो भाई देख के आए उसकी बहू कैसी दिखती है, दुल्हन कैसी दिखती है, कैसी दुल्हन आई है, स्वभाव कैसा है, देखने में कैसी है, है ना। तो बहुत लोग दुल्हन से मिलने आते हैं, दूल्हे से मिलने कोई कोई आता है, पर दुल्हन को देखने में सब लोग खासे इंटरेस्टेड होते हैं। तो वो लोग जाते हैं देखने के लिए, तो देखते हैं बड़ी सुंदर सी है, बड़ी शर्माती हुई एक लड़की बैठी हुई है, हल्के हल्के मुस्कुरा रही है, शर्मा रही है, सुंदर लग रही है, हैं, कोमल स्वभावा लग रही है, स्निग्धा लग रही है, उसकी दृष्टि बड़ी ही करुणामय है, सेवा परायणा दिख रही है। सब कहते हैं बड़ी सेवा करती होगी भाई, है ना, बहुत अच्छी बहू लाए हो, आपके तो भाग्य खुल गए। तो नववधु जो है ना वो जिस प्रकार अमृत के समान एकदम मधुरा सी होती है ना, एकदम मधुरा सी होती है, अभी आई ही है, एक दिन हुआ है, दो दिन हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है, नई नवेली आई है, नई नवेली, तो लोग उसको देखने के लिए जाते हैं ना। ऐसे ही क्या है, ये विद्या वधु जीवनम, यानी जो भक्ति है, जो भगवान का नाम है और जिसके कारण भक्ति जो है हमारे हृदय में पनपती है, वो जो भगवान का नाम है वो विद्या वधु जीवनम है, यानी समस्त विद्याओं में वही वधु है, वधु है, यानी कि कैसा है, सरस है, मधुरा है, स्निग्ध है। तो ये जो नाम संकीर्तन के कारण जो हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है उसको बोला गया है नववधु, नववधु है ना, विद्या वधु जीवनम। तो भक्ति हो गई क्या, भक्ति हो गई विद्या, विद्या और भक्ति एक तत्व हो गए, है ना। और ऐसी भक्ति जो भगवान की सेवा की प्राप्ति करा दे, और ऐसी भक्ति जो कि नाम संकीर्तन से उदित होती है, ऐसी भक्ति के बारे में यहाँ पर बताया गया कि ये जीवन है, व्यक्ति का जीवन है। और क्या बताया गया इसी पर चर्चा करेंगे हम, सुनते रहिए समर्पण कार्यक्रम। समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेमधारा। हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही सुंदर श्लोक पर जहाँ श्री हरि नाम की विशेषताएं आपको बता दी जा रही है। इस श्लोक में श्लोक एक बार फिर से आपके लिए, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। भगवान का जो नाम है, भगवान का जो नाम संकीर्तन है, उसका महत्व हम आपको बता रहे हैं कुछ एक अपने कार्यक्रमों से। हम आपको अब बता रहे हैं कि कैसे भगवान का नाम जो है वो विद्या वधु जीवनम है। विद्या रूपी वधु का जीवन। देखिए, याद रखिए, जो नाम संकीर्तन है ना, वो परम विद्या है। परम विद्या क्यों है? क्योंकि नाम संकीर्तन भक्ति को उत्पन्न करता है हमारे हृदय में। जब भगवान का नाम लेते हैं, नाम लेते लेते हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, तो भक्ति महारानी उस शुद्ध चित्त में अपना स्थान बनाती हैं। ये तो आपको मालूम ही होगा, है ना? और भक्ति ही है, ऐसी सरस भक्ति ही है समस्त विद्या की मूल, यानी कि समस्त विद्या की वधु। वही है मधुरा। मधुरा क्यों? क्योंकि देखिए, हम सब जीव आत्मा ना मधुर और सुंदर के पीछे भागते हैं। ये तो आपको बताया, जो भी सुंदर है बस उसे देखना चाहते हैं, जो सुंदर है उसे खाना चाहते हैं, जो सुंदर है उसे अपनाना चाहते हैं, है ना? और सुंदर क्या है? सुंदर है भगवान। मिलेंगे कैसे? भक्ति से मिलेंगे। तो जो भक्ति हमें भगवान तक पहुंचा दे, वही तो सबसे अच्छी है ना, सबसे सुंदर है ना। तो इसीलिए उन्हें वधू कहा गया भक्ति को। और ऐसी भक्ति जो है कैसे प्राप्त होगी? बिना नाम संकीर्तन के प्राप्ति असंभव है। क्यों? क्योंकि कलयुग में सिर्फ नाम संकीर्तन से, यानी भगवान का नाम लेने से ही हमारे हृदय में शुद्धता आ सकती है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे कि चलो जी, हम अर्चन करेंगे, हम भगवान का पूजा पाठ करते हैं जी, मंदिर भी जाते हैं हम, और हम जी गरीबों की मदद भी करते हैं, भंडारा भी खिलाते हैं, इधर उधर पैसे भी दान करते रहते हैं, तो क्या हमारा चित्त शुद्ध नहीं होगा? तो उत्तर है नहीं। इतनी जल्दी चित्त शुद्ध नहीं होगा। ऐसे कई लोग होंगे, कई लोग आप देख लीजिए, जो बहुत पैसा खर्चा करते हैं दूसरों के लिए, सब कुछ करते हैं, लेकिन उस परिमाण में उनका चित्त शुद्ध नहीं होता जहां पर भगवान की अचला भक्ति स्थापित हो सके। ऐसा नहीं होता, वो अनेक देवी देवताओं की भी पूजा करते हुए नजर आएंगे आपको। सुदृढ़ भक्ति, जो कि आपको सीधा भगवत पाद पद्मों तक ले जाए, ऐसी भक्ति उनके हृदय में बिल्कुल अपना स्थान नहीं बना पाती है। क्या कारण है इसका? वही, भगवान का नाम नहीं लेते। तो अगर हम भगवान का नाम ना लें और भक्ति के अन्य साधनों को हम अपना लें, जैसे कि हम स्मरण कर रहे हैं पर भगवान का नाम नहीं ले रहे, तो कौन से चित्त से स्मरण होगा? अशुद्ध चित्त से भगवान का कभी स्मरण हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो अशुद्ध चित्त है वो तो यहां वहां भागेगा, है ना? तो जब तक वो अशुद्ध रहेगा, वहां शुद्ध सत्व कैसे आएगा? तो फिर शुद्ध कैसे हो? शुद्धता होगी सिर्फ नाम से, हरि नाम से। क्योंकि ये कहा गया है कि कलयुग में सिर्फ हरि नाम ही एकमात्र उपाय है। हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि हरि नाम के अलावा अन्य कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। किस चीज के लिए उपाय नहीं? भाई, चित्त शुद्धि के लिए। और अगर चित्त शुद्ध नहीं होगा तो भक्ति वहां पर आएंगी नहीं। भक्ति के बगैर भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति की तो कोई संभावना ही नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि कलयुग में भगवान का नाम लेते हुए भक्ति के अन्य अंगों का आप याजन कीजिए, अन्य अंगों को अपनाइए। कौन से अंग? श्रवण है और स्मरण है, अर्चन है, वंदन है, सख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, ये सारे जितने भी अंग हैं भक्ति के, ये साथ साथ अगर नाम के चलेंगे, हरि नाम के साथ साथ चलेंगे, तो विशेष फलदायक होंगे, जल्दी भगवत चरणों की प्राप्ति हो जाएगी, है ना? तो आप सभी भगवान के नाम को सीरियसली अपनाएं और उनकी शरण लें। ऐसी ही शुभकामना के साथ आपके लिए भी और मेरे लिए भी अब आपसे इजाजत लेती है प्रेम धारा। नमस्कार। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं, प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? देखिए, हम अगर कहें कि हम ठीक हैं तो ये गलत बात होगी, कारण कि नानक दुखिया सब संसार, सब लोग तो दुखी हैं। और दुखी क्यों हैं? क्योंकि ना जाने कितने जन्मों के संस्कार हम अपने चित्त में चिपकाए घूम रहे हैं, है ना? चित्त एकदम मैला कुचैला, कहते हैं ना, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन घबराऊं। तो ये जो चित्त का मैलापन है ये कैसे हटेगा, यही तो हम आपको बताते आ रहे हैं अपने कुछ एक कार्यक्रमों से कि ये चित्त का मैलापन भगवान का नाम लेने से हटेगा, है ना। भगवान का नाम, कौन सा भगवान का नाम? आपको बताया है कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग की जो भवरोग नाश की औषधि है वो है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस इसी महामंत्र का जाप करते रहिए तो फिर आपका जो है चित्त साफ हो जाएगा और वहाँ भगवान जो है आपको अनुभव में आने लगेंगे, आप भगवान की तरफ मुड़ जाएंगे। तो ये जो हरि नाम है ये कैसे हमारे चित्त पर कार्य करते हैं, ये हरि नाम जो है जो भगवान के नाम से अभिन्न है, है ना, भिन्न नहीं है, एक ही है, तो ये कैसे हमारे चित्त को साफ करते हैं और हमारे जीवन को विकसित करते हैं। नाम लेते रहने से व्यक्ति का जीवन कैसे परिवर्तित होता चला जाता है, यही हम आजकल चर्चा कर रहे हैं श्री श्री शिक्षाष्टकम के श्लोकों द्वारा जो हमें बहुत ही कृपा करके श्रीमन महाप्रभु ने दिए हैं। और हम पहले श्लोक पर चर्चा करते आ रहे हैं और आज भी उसी चर्चा को हम जारी रखेंगे। श्लोक एक बार फिर से आपके लिए, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाबुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृत स्वादनम सर्वात्म स्रपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अर्थात जो चित्त मार्जनकारी संसार महादावनल का निर्वापक, मंगल रूपी कुमुद के विकास के लिए ज्योत्सना स्वरूप, विद्या रूपी वधु का प्राण, आनंद समुद्र को वर्धित करने वाला, जिसके प्रत्येक पद में समस्त रसों का आस्वादन, जो समस्त इंद्रियों मन बुद्धि और आत्मा को स्नान कराने वाला है, वही श्री कृष्ण नाम संकीर्तन सर्वोत्कर्ष होकर विराजमान हो रहा है। बहुत ही सुंदर बात आप सुनते चले आ रहे हैं। हमने अभी तक आपको बताया कि कैसे श्री हरि नाम चित्त का दर्पण साफ करते हैं, भव महादावाग्नि को बुझा देते हैं और हमारे मंगल रूपी जो कुमुद है उसको ज्योत्सना की तरह विकसित कर देते हैं और समस्त विद्याओं का वधु जीवनम है। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हरि नाम हमारे आनंद के समुद्र को प्रतिपल बढ़ाते हैं, कैसे उनके अंदर ये शक्ति है। देखिए, जब हम आनंद के समुद्र की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक समुद्र का चित्र उभरता है ना। आप तो जानते हैं कि जितने भी देश हैं, संसार के जितने भी देश हैं और वहां जितनी भी नदियां हैं, वो कहां भागती हैं? सारी नदियां समुद्र की तरफ भागती हैं, सारे नाले रात दिन समुद्र में जल डालते रहते हैं, लेकिन कभी भी समुद्र ये नहीं कहता कि अरे मेरे अंदर बहुत जल हो गया, चलो मैं बाढ़ ले आऊं, ऐसा नहीं होता। नदियों के कारण तो बाढ़ आ भी जाती है पर समुद्र के कारण बाढ़ नहीं आती है, क्योंकि समुद्र अपने तटों का कभी भी मर्यादा नहीं तोड़ते, मर्यादा उल्लंघन नहीं करते। लेकिन तब जब पूर्णिमा का चांद आसमान में उठता है तो ज्वार भाटे के रूप में इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं समुद्र में कि तटबंध का अतिक्रमण हो जाता है। इसी प्रकार इस संसार में हम आनंद प्राप्त करने के लिए अनेक साधनों को खोजते रहते हैं, कई साधन हैं, लेकिन तब भी भक्त के हृदय में कोई भी साधन ऐसा आकर्षण नहीं कर पाता जैसा भगवान श्री कृष्ण नाम संकीर्तन से भक्त के हृदय रूपी आनंद सिंधु में अनंत तरंगे पैदा होकर के उफान पैदा हो जाती हैं। अनेक अनेक तरंगे उत्पन्न होती हैं और उफान हो जाता है, उफान तूफान आ जाता है ना। क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये जो आस्वादन है ना, ये भगवान के नाम के अंदर ही निहित है। क्यों? क्योंकि नाम और नामी एक ही तो है। भगवान का जो सौंदर्य है, भगवान का जो माधुर्य है, जिसके बारे में हम सोचते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, वही माधुर्य भगवान के नाम में है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता। क्यों महसूस नहीं होता? देखिए सीधी सी बात है, कई बार आपको ये एग्जाम्पल दिया, जैसे मिश्री बहुत मीठी होती है लेकिन जिसको पी लिया हो गया है ना, अगर उसे कहेंगे जरा बताना मिश्री कैसी है, तो बोलेगा ये तो बहुत कड़वी है, वो फेंक देगा, है ना। इसी तरह से जब हमारे अंदर असीम अनेक जन्मों के, अनेक अनेक जन्मों के संस्कार हैं और अपराध भी हैं, हमने कितने भक्तों का दिल दुखाया होता है, हमने नाम अपराध किए हैं, हमने सेवा अपराध किए हैं, तो भगवान का नाम हालांकि असीम आनंदपूर्ण है, लेकिन जो जीवा जीव अपराध में डूबी हुई है, उस जीव पर उनका जो आनंद है ना वो प्रकट नहीं हो पाता, हम अनुभव नहीं कर पाते। अब कोई कहे अरे जी हम तो भगवान का नाम लेते हैं हमें नींद आती है, इसमें तो कोई आनंद ही नहीं है, तो ये ठीक नहीं होगा, है ना भाई। मेरी इंद्रियां शक्ति विहीन है, अब इसमें अनुभूति नहीं आई तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उस वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई वैज्ञानिक कहे कि आकाश में ऐसे भी नक्षत्र हैं जिनका प्रकाश आज तक हमारी पृथ्वी को स्पर्श नहीं कर पाया, पर कोई कहे नहीं नहीं जी ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं, हमने तो देखा नहीं। लेकिन जिन वैज्ञानिकों ने उन नक्षत्रों को अपने यंत्रों से देखा है उन्होंने इस अस्तित्व को स्वीकार किया है और कहा है कि हाँ नक्षत्र हैं। इसी प्रकार से जिन सब महान भक्तों का चित्त और जीभ जिह्वा अपराध शून्य है, निर्मल है ना, वो नाम आनंद का आस्वादन प्राप्त करके धन्य हो रहे हैं और उनका आस्वादन ही इस बात का प्रमाण है ना। देखिए याद रखिएगा कि जो साक्षात भगवान की मूर्ति है ना, जो भगवान है ना, प्यारे हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, जितने आनंद धाम वो हैं, जितना मधुर वो हैं, वैसी ही मधुरता वैसा ही आनंद हमारे प्यारे भगवान के श्री नाम में है ना। और ये नाम का जो आनंद है ये तो अनुभव में आता है भक्तों के ही, भक्त अनुभव करते हैं, वो बोलते हैं कृष्ण नामे जे आनंद सिंधु आस्वादन, ब्रह्मानंद तार आगे खातु दम सम, है ना, कि ब्रह्मानंद भी टिक नहीं पाता भगवान के नाम का ऐसा रस है। सोचिए, देखिए एक बात याद रखिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको कि जैसे भगवान साक्षात आ गए थे असुरों के आगे, है ना, अभक्त असुरों के आगे, जैसे चाणूर मुष्टिक ये सब पहलवान या कंस इन सब के आगे भगवान आ गए। भगवान साक्षात आनंद घन विग्रह है लेकिन उनका साक्षात दर्शन पाकर भी, और यहाँ तक कि उन असुरों ने भगवान का स्पर्श किया, आनंद घन विग्रह का स्पर्श किया, फिर भी आनंद की जगह दुख और यातना ही वो पाए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रेम नहीं था। इसी तरह से चिदानंद रस पूर्ण भगवान का नाम भी, उसका आस्वादन भी अपराधी और अभक्त की जीभ पर नहीं हो पाता है। और भी क्या कुछ है इसी पर चर्चा करेंगे हम, सुनते रहिए समर्पण कार्यक्रम। समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेमधारा और हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही सुंदर श्लोक पर, जहाँ हम बता रहे हैं आपको कैसे भगवान का जो नाम है वो भक्तों की जैसे जैसे अवस्था विकसित होती चली जाती है वैसे वैसे उनके हृदय में आनंद का समुद्र वर्धित होता चला जाता है भगवान के नाम से ही, और कैसे भगवान के नाम के सुंदर सुंदर विशेषण हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं श्लोक के माध्यम से। एक बार फिर से श्लोक आपके लिए, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्पनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हमने यहाँ पर चर्चा की कि कैसे भगवान का जो नाम है वो आनंद के समुद्र को प्रतिपल प्रतिक्षण वर्धित करता है। हमने आपको बताया कि ये जो आनंद है ना, ये आनंद जड़ी आनंद नहीं है, ये आनंद ऐसा आनंद नहीं है कि कहीं आप मॉल में गए और आपने कोई अच्छी चीज देख ली और आप कहें हाँ मैं आनंदित हो गया और वो दो मिनट में वो आनंद का नशा उतर भी गया, ऐसा आनंद नहीं है। यहाँ है आनंद का मतलब भाव का आनंद, भाव। इंसान सुख चाहता है, सुख मन में उपजता है, आनंद भी मन में उपजता है। तो जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है, नाम लेते लेते जब उसकी अनर्थ निवृत्ति होती है, निष्ठा आ जाती है भगवान के प्रति, और जब वो रुचि स्तर तक पहुंच जाता है, भगवान में रुचि हो जाती है, तब क्या होता है, तब उसे नाम कीर्तन में जिस आनंद का मजा आता है, जिस आनंद का वो आस्वादन करता है, धीरे धीरे आसक्ति स्तर पर वो आनंद उसे पहुंचा देता है और आनंद बढ़ता जाता है। धीरे धीरे ये आनंद बढ़ते 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 उसे भाव यानी रति के स्तर पर पहुंचा देता है और ये जो आनंद है वो अनंत समुद्र के समान होता है। सोचिए अनंत समुद्र के समान। तो जैसे समुद्र में चांद को देखते ही ज्वार भाटे उठने लगते हैं ना, ऐसे ही फिर जब भक्त का हृदय कलमश विहीन हो जाता है, जब भक्त का हृदय शुद्ध हो जाता है, जब भक्त का हृदय निष्काम हो जाता है, और जब भक्त के हृदय में जब उसके चित्त में भगवान के भाव उमड़ने लगते हैं, निष्ठा रुचि उत्पन्न हो जाती है, आसक्ति आ जाती है, तो क्या होता है, तो भक्त के हृदय में भी श्री नाम के प्रभाव से आनंद उत्पन्न होने लगता है, आनंद सिंधु ऊपर उठता रहता है ना, आनंद वर्धित होता रहता है निरंतर। ये आनंद ऐसा नहीं है कि एक बार भगवान का नाम लिया और नाम लेना बंद तो आनंद खत्म, नहीं, ये आनंद स्थायी आनंद है। सदा सर्वदा वर्धित होता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, नित नवीन होता रहता है। याद रखिए, जैसे भगवान जो है ना, भक्तों को हमेशा नए नए जैसे लगते हैं हमेशा, ऐसे ही भगवान का नाम भी जो है नवीनता लिए रहता है, आस्वाद्य होता है जब भक्त का चित्त कलमश विहीन हो जाता है और इतना आनंद आता है कि उसके आगे मोक्ष आनंद भी तुच्छ होता है, तुच्छ हो जाता है एकदम। मोक्ष नहीं लेना चाहते भक्त, कहते हैं प्रभु हमें तो जन्म के बाद जन्म देना, पर आपके नाम में हमारी रति ऐसी ही रहे। क्यों? क्योंकि इसमें जो आनंद है वो तो कहीं और है ही नहीं, है ना। तो देखिए, भगवान का नाम स्वप्रकाश है, हरेक की जीवा पर उदित नहीं होते भगवान के नाम, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति भगवान की पूरी शरणागति ले लेते हैं और अपराध विहीन होते हैं, भगवान का एक नाम लेते ही उन्हें प्रेम प्राप्ति हो जाती है ना। और ये जो प्रेम है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। भगवान के नाम का जो आनंद है, यही हमें उस लक्ष्य की तरफ ले जाता है। तो हरि नाम आप भी ग्रहण करें, आप भी अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करें और ये कार्य मैं भी कर सकूं, बस इसी शुभकामना के साथ अब इजाजत चाहती है आपसे प्रेम धारा। नमस्कार। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? देखिए, हम लोग पिछले कुछ हफ्तों से चर्चा कर रहे हैं कि कलयुग में भगवत प्राप्ति और भगवत प्रेम प्राप्ति का जो मुख्य आधार है, जो मुख्य तरीका, मुख्य उपाय है, वो है हरिनाम संकीर्तन, भगवान का नाम लेना, भगवान के नाम का जाप, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे शास्त्रों में बहुत ही सुंदर तरीके से बताया गया है कि जब हम इस महामंत्र का, देखिए इस मंत्र को ही महामंत्र कहा गया है, कलयुग का विशेष मंत्र है, इस महामंत्र का जब हम जाप करते हैं तो हमारे चित्त का दर्पण साफ हो जाता है। और महाप्रभु ने बहुत ही सुंदर श्लोक बोला है अपने शिक्षाष्टकम में, जहां पर उन्होंने 8 शिक्षाएं हमारे लिए बहुत सुंदर तरीके से दी हैं, हमारी जीवन शैली को परिवर्तित कर देती हैं ये 8 शिक्षाएं। तो हम अभी पहली शिक्षा यानी कि हम नाम, हरिनाम की विशेषता पर जिक्र कर रहे हैं। हमने आपको बताया था कि कैसे हरिनाम चित्त का दर्पण मार्जन करता है इस श्लोक के द्वारा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। अर्थात जो चित्त मार्जनकारी, संसार महादावनल का निर्वापक, मंगल रूपी कुमुद के विकास के लिए ज्योत्सना, विद्या रूपी वधु का प्राण, आनंद समुद्र को वर्धित करने वाला, जिसके प्रत्येक पद में समस्त रसों का आस्वादन, जो सर्वात्म स्नपनकारी हो, वही श्री कृष्ण नाम संकीर्तन सर्वोत्कर्ष होकर विराजमान हो रहा है। तो हमने अभी तक आपको बताया कि कैसे जो है आनंदाम्बुधि वर्धनम यानी आनंद के समुद्र को वर्धित करते हैं भगवान के जो पवित्र नाम है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पूर्णामृत स्वादनम भगवान के नाम में है, और वो भी कैसे प्रतिपदम, यानी जब हम भगवान का नाम, उनका कीर्तन करते हैं तो प्रत्येक पद में पूर्ण अमृत के आस्वादन का लाभ होता है ना। यानी कि पद ही छोड़ दीजिए, नाम के प्रत्येक अक्षर में भी पूर्ण अमृत का आस्वादन निहित है, यदि जो नाम कर रहा है वो निरपराध हो जाए, भगवान के प्रति और भक्तों के प्रति उसके हृदय में कोई अपराध ना हो। तो फिर देखिए पूर्ण अमृत प्राप्त होता है। ये याद रखिएगा, ये जो प्रेम है ना, भगवान का प्रेम, यही पूर्ण अमृत है। जब हम कह रहे हैं ना कि पूर्ण अमृत अस्वादनम, इसका मतलब है कि हरिनाम में वो शक्ति है जिससे हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उपजता है, और ये प्रेम ही पूर्ण अमृत है। जैसे कि दूध को आप दही बनाएं और उसे बिलोएं 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 तो फिर मक्खन आ जाता है, ऐसे ही भगवान का नाम लेते 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 ये प्रेम रूपी मक्खन हमारे हृदय सिंधु से उदित हो जाता है। और ये जो पूर्णामृत है ना, ये जो प्रेम है ना, यही भगवत रस आनंद के आस्वादन का कारण भी है। अगर प्रेम ना हो तो हम भगवान का रस पान ही ना कर पाए। भगवान स्वयं में रस है, हमारे श्रुति हमारे वेद कहते हैं रसो वैसा, रस है तो उसे पिएंगे ना, पी कैसे पाएंगे, आस्वादन कैसे कर पाएंगे, आनंद कैसे आएगा, है ना। तो बताया कि जब प्रेम होगा तो आनंद आएगा। प्रेम कैसे होगा, जब हरि नाम लेते रहेंगे और हमारा जो है भक्ति का विकास होगा तो अंततः हमें प्रेम प्राप्त होगा। याद रखिए, ये जो पूर्ण अमृत है यानी प्रेम रूपी अमृत है ना, इसके अलावा कुछ भी स्वादिष्ट नहीं है संसार में, कुछ भी स्वादिष्ट नहीं है, है ना। तो ये प्रेम जो भगवत रसानंद का आस्वादन कराता है, उससे अधिक स्वाद किसी भी वस्तु में नहीं है। ये बड़ी मजे की बात है ना। तो जब प्रेम उदित हो जाता है और प्रेम उदित होने पर जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो क्या होता है, तब नाम कीर्तन श्रवण और स्मरण के प्रत्येक पद में भगवान की स्फूर्ति होने लगती है ना, भगवान हमें नजर आने लगते हैं। और याद रखिए, जब चित्त में प्रेम हो जाता है यानी प्रेम पूर्ण चित्त में जब हम बार बार भगवान का नाम लेते रहते हैं, पुकारते रहते हैं, तो भगवान आकर्षित होने लगते हैं, परिणाम स्वरूप साक्षात भगवान दर्शन होने लगता है। कितनी बड़ी बात है। और तब क्या होता है, तब भगवान के रूप रस गंध स्पर्श शब्द इन सरोवर में, समझ लीजिए सरोवर हैं ये पांचों, और इन सरोवर में जो नाम साधक है ना, जो नाम ले रहा है, उसकी सारी इंद्रियां, मन बुद्धि और यहां तक कि उसकी आत्मा तक पूरी तरह से डूबने लगती है। जैसे कि अगर हम कुछ चीज खाएं जीभ के द्वारा तो फिर क्या होता है, सारी इंद्रियां पुष्ट हो जाती है ना, ऐसे ही जब हम नाम कीर्तन कर रहे हैं जीभ के द्वारा तो भी हमारी सारी इंद्रियों में आनंद रस फैलने लगता है, हमारी इंद्रियां आनंद रस में यानी भगवत आनंद रस में डूबने लगती हैं, है ना। जीभ जब भगवान का नाम लेती है तो जीभ जो है आनंद रस में निमग्न होती है, कान से सुनने से ही नाम रस में कर्णेन्द्रिय यानी कान निमग्न हो जाते हैं, साथ ही साथ नाम रस मन में भी उदित होता है, तो मन बुद्धि और आत्मा नाम आनंद के अथाह जल में डूबने लगते हैं। और फिर आस्वादन के साथ साथ क्या होता है, और तृष्णा बढ़ती है, और प्यास बढ़ती है, नहीं मैं और सुनूं भगवान का नाम, और करूं, अरे अभी तो 16 माला कर रहा था, 32 करूं, 32 क्यों कर रहा हूं, 64 करूं, 64 से क्या होगा, 2 लाख तक ले जाऊं, ऐसे करके अधिक आस्वादन की लालसा बढ़ती जाती है। हमारे एक बहुत बड़े महान आचार्य हैं जिन्होंने कहा है, तुंडे तांडविनीम रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड़ कडम्बिनी घटियते कर्णाबुदेभ्यः स्पृहाम चेतहा प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जाने जनिता कियद भीरमृते ही कृष्णेति वणद्वयी। अर्थात जो जिह्वा से उच्चारण होने पर अनेक जिह्वाएं प्राप्त करने की वासना जगाते हैं, कान से स्पर्श करते ही करोड़ों कानों को प्राप्त करने की इच्छा जगाते हैं, जो चित्त प्रांगण की संगनी होने पर सभी इंद्रियों के कार्यकलापों को निश्चल कर देते हैं, ना मालूम क्री और श्न ये दो अक्षर कितने प्रचुर अमृत द्वारा रचे गए हैं। की कहबो नामेर माधुरी केमन आमिया दिया के जानी गड़िलो इहा कृष्ण ए दू आखर कोरी, है ना। कि नाम की माधुरी की चर्चा हम क्या करें, ये कृष्ण नाम में कितना अमृत है इसकी चर्चा हम क्या करें, सोचिए कितनी सुंदर बात है ना। भगवान के नाम का जो अमृत है उसका आस्वादन अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो फिर इस जगत के सभी स्वाद झूठे लगते हैं, मिथ्या लगते हैं। और ये सब कैसे होता है, इसी पर चर्चा करेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण कार्यक्रम। समर्पण में आपके साथ हूँ मैं प्रेमधारा, और हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही सुंदर श्लोक पर जहाँ पर भगवान नाम की महिमा आपको बताई गई है। एक बार फिर से श्लोक आपके लिए, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नुपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो इस समय हम सर्वात्म स्नुपनम यानी कि जहां पर समस्त इंद्रियां भगवान नाम रस में डूब जाती हैं और कैसे उनको आनंद प्राप्त होता है इसी पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, याद रखिए, ये जो हमारी इंद्रियां हैं ना, ये बहुत दुखित हैं आज की तारीख में, छटपटाई हैं, तृष्णातुर हैं, तृष्णा ही तृष्णा भरी है इनमें आनंद प्राप्त करने की, और जीव जो है गलत दिशा में आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए बेचारी छटपटाई हुई है। और हम जीव के रूप में तीन तापों से ग्रस्त हैं, तीन ताप हमें हमेशा हमेशा जलाए रहते हैं, ना जाने कब से जला रहे हैं। तो हमारी इंद्रियों के अणु परमाणु को अगर हम परमानंद रस में डुबोना चाहेंगे तो वो सिर्फ संभव है श्री कृष्ण नामामृत रस से ही। अगर हम भगवान का नाम लेते रहेंगे तभी धीरे 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 हमारा चित्त, हमारी इंद्रियां, सब कुछ उस नाम की महानता से सब कुछ परमानंद रस में डूबने लगेगा, भगवान के नाम अमृत रस में डूब जाएगा। और जैसे ही नाम अमृत रस जीव पर प्रादुर्भूत होगा वैसे ही माधुर्य रस द्वारा समस्त इंद्रियों को वो आप्लावित कर देगा, अगर हमारा जो चित्त है वो पाप विहीन हो, अपराध विहीन हो। याद रखिएगा, जीव चाहे जितने भी पाप या ताप क्यों ना कर ले, कितने भी उसको ताप मिल जाए और कितने भी वो पाप कर ले, कितने भी पाप हो जाए उससे, लेकिन हर पाप का प्रायश्चित एक ही है, भगवान नाम का कीर्तन, यही सब प्रकार से कल्याण करेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का नाम लिया आपने और उसके बाद भी आप पाप करते रहें और सोचें अरे हमारा कल्याण तो हो जाएगा, थोड़ा नाम ले लेंगे, तब कल्याण नहीं होगा। इसीलिए कहा गया अपराधों से दूर रहेंगे तभी आप भगवत प्रेम और भगवत प्रेम सेवानंद का लाभ प्राप्त करके धन्य हो पाएंगे। देखिए बहुत खूबसूरती से इस बात को कहा गया है हमारे गोस्वामियों द्वारा, संकीर्तन होइते पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि सर्व भक्ति साधन उद्गम, कृष्ण प्रेमोद्गम प्रेमामृतास्वादन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्रे मज्जन। यानी भगवान के नाम से पाप नाश होता है, संसार हमारा खत्म हो जाता है, ये पाप की वजह से संसार है हमारा, और संसार और संसार के कारण नष्ट हो जाते हैं, चित्त एकदम शुद्ध हो जाता है, और जो हम भक्ति करना चाहते हैं उसके साधनों में आनंद आने लगता है, साधनों का पता चल जाता है, आनंद पूर्वक हम उस दिशा में बढ़ते हैं, फिर भगवान का प्रेम इसी हृदय में जो है उदित होता है और उस प्रेम अमृत का हमें आनंद आने लगता है, हम उसका आस्वादन करते हैं प्रतिपल प्रतिक्षण, और फिर क्या होता है उस प्रेम से भगवान आकर्षित हो जाते हैं, और जब भगवान आकर्षित हो जाते हैं तो जाहिर है इस जीवन में भी हमें उनकी सेवाओं की प्राप्ति हो जाती है, हम भगवान और उनके भक्तों की सेवा करते करते उस सेवा में डूबने लगते हैं, उस सेवा अमृत में हम जो है उस समुद्र में, सेवा अमृत के समुद्र में गोते लगाने लगते हैं। कितनी बड़ी बात है ना। और फिर क्या है, उस धाम में भी यानी भगवान के धाम में भी भगवान न सिर्फ जीवों को अपना पार्षदत्व प्रदान करते हैं अपितु उन्हें अपनी सेवा दे करके धन्य करते हैं। याद रखिए, हमारा जो नित्य स्वरूप है वो सेवा ही है, भगवत सेवा, जिसे भूल करके हम सांसारिक लोगों की सेवा करके फंसे हुए हैं, तड़प रहे हैं, तीन ताप की ज्वाला से जल रहे हैं, मनुष्य जीवन इन ज्वालाओं की शांति के लिए मिला है। और याद रखिए, ये जो परमानेंट शांति है, ये जो स्थायी शांति है, सिर्फ भगवान के नाम को गा करके, भगवान के नाम को जप करके ही प्राप्त की जा सकती है ना। और तरीका हमने आपको बता दिया है, हमने तरीका भी बताया, उसका फल भी बता दिया है। आशा है कि आप भगवान के नाम को सीरियसली ग्रहण करेंगे और मैं भी ऐसा कर पाऊं। बस इसी शुभकामना के साथ अब आपसे इजाजत चाहती है प्रेम धारा। नमस्कार।
श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंधा, श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंधा, चामर ढुलाबो कबे हेरिबो मुख चंद।